नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड चैनल प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगी श्रीमती राज्यलक्ष्मी राव, नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स। इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास मिटेसन, जो है CMD नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट IBG एंड द ऑनरी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। तो दोस्तों सुनते हैं छूलो आसमान।
आज हमारे साथ हैं मिसेज राजलक्ष्मी राव। ये बहुत चीज़ें हैं लेकिन मेन राइट नाउ ये हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। बाकी ये हैं डायरेक्टर महिंद्रा ग्रुप एंड मेनी अदर बॉडीज़ लाइक IMC, ये इनसे पूछेंगे अभी आगे चल के। वेलकम मिसेज राव, आप हमारे स्टूडियो पर आए।
नमस्कार जी, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी।
आपका अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, आप कहाँ से बॉर्न हुए, बॉम्बे कब आए, शिफ्ट हुए और क्या करे, स्कूल, एजुकेशन, कॉलेज।
मेरी पैदाई चेन्नई में हुई।
चेन्नई,
हाँ। उसके बाद हैदराबाद में एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन वहाँ थी। शादी होके फिर अमेरिका गई।
अच्छा।
16 साल की थी, मेरे पिताजी ने अमेरिका भेजे पढ़ाई के लिए। सो थोड़ा पढ़ाई वो टाइम पे की। फिर शादी के बाद दूसरा डिग्री लेने के लिए गई। पहले इधर BCom MBA इंडिया में किया, उसके बाद MS इन एडवर्टाइजिंग अमेरिका में किया।
माय गॉड,
यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में। फिर वापस आई एंड मुझे मुंबई बहुत पसंद है, इसीलिए मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है।
अच्छा।
फिर भी मेरे हस्बैंड हु इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और हम दोनों सोच लिए मुंबई हमारे माइंड के लिए अच्छा है। इसीलिए यहाँ आ गए।
तो आपके ब्लड में है क्या इतना एजुकेशन जो आप करके आए हैं?
हाँ, मेरे पिताजी वो दिनों में इंजीनियरिंग के लंदन में, उनके गाइडलाइंस में हम सब आगे बढ़ गए, सब अमेरिका जाके पढ़ाई किए। इसके नतीजा अभी देख रही हूँ, इंडो अमेरिकन चेंबर में देख रही हूँ कैसे यहाँ पहुँची। शायद ये सब बैकग्राउंड इसके लिए मदद किया।
पर इतना एजुकेशन करके आपके काम में आता है क्या अभी?
एक्चुअली मैं जब MBA MS की, मैं सोचती थी मैं बड़ा कॉन्फ्रेंस टेबल में बैठूं, मैं प्रेसिडेंट हूं और सब लोग वहां मेरी बात सुनना है। ये लेडीज के लिए अभी ताकत चाहिए, मैं बनूंगी, ऐसा करूंगी कुछ चीज जहां मेरी इम्पोर्टेंस एज अ वुमन शुड बी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। ऐसा मेरी माँ बोलती थी।
हाँ।
कुछ कम नहीं हो।
हाँ।
किसी को नहीं झुकना, तुम्हारे दिल में जो तुम करिए करेक्ट है, फिर जस्ट आपके माइंड सेट से जाओ और भगवान तुम्हारे साथ देगा। सो वो बोलती थी, इसीलिए मैं ऐसा ड्रीम करने लगी। MBA किया, MS किया एडवर्टाइजिंग। वो दिनों में कोई एडवर्टाइजिंग में इतने डिग्रीज में कोई नहीं थे, अमेरिका में भी नहीं थे, इधर भी। सो मैं शायद फर्स्ट वन हो सकती थी। पर जब इंडिया आई और देखी मैं ये बनूंगी वो बनूंगी वैसे सोच के, यहाँ आके देखे और ये न्यूज़पेपर में जो है, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ के सब सोचते थे ये सच है।
अच्छा,
उनको लगा ही नहीं कि
एडवर्टाइजिंग न्यूज़ है।
वो लोग बच्चों के लिए छोटी छोटी शूज लेना है ऐसे नहीं लेते थे, ये ऐसे चीजें खरीदते थे क्योंकि मेरी एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स में कर लिख सकती हूँ, वो मेरी प्रोफेशन था। मुझे इतना खराब लगा।
हाँ।
मैं इंडिया इसीलिए नहीं आई पैसे बनाऊं ऐसे चीज के लिए, ये कंट्री अभी तैयार नहीं है। सो ये सभी गलत चीजें जब हो रहा है उसको कैसे चेक करना है करके सोचती बैठी। सो सोशल वर्क करना शुरू किया।
अच्छा।
मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरा बास्केट में डाल दी, सिर्फ सोशल वर्क करने शुरू की। फिर कंज्यूमर कोर्ट के बारे में मालूम पड़ा, ये एग्जैक्टली जो मुझे करनी चाहिए वो है, ऐसा सोच के उसमें चले गई।
Thank you.
आप आरबीआई के कोई इम्पोर्टेंट कमेटी में हैं या थे?
कंज्यूमर्स के लिए कमेटी था.
अच्छा.
जैसे दामोदरन की कमेटी आरबीआई हेड कॉन्स्टिट्यूटेड किए हैं. वो पूरा देश में हम जाके सबको मिल के उसके बाद रिपोर्ट दिया है आरबीआई को. वो भी क्या है, कंज्यूमर कोर्ट्स में मैं नेशनल कमीशन में बहुत सारे जजमेंट्स दिए अगेंस्ट बैंक्स और उसमें आरबीआई का भी पार्टी था. तो हम बोलते थे आरबीआई मदर ऑफ ऑल बैंक्स, आपको तो इसको कंट्रोल करनी चाहिए. सो बहुत सारे जजमेंट्स लिखी. सो इस हिसाब से मैं आरबीआई में एक बार आके लेक्चर भी दिया सभी लोगों को. वो दिनों में जैसे काम के हिसाब से वो सब होता था.
तो कंज्यूमर कोर्ट की आपकी स्टोरी बताइए.
बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जब थी छोटी शेड था, बट मुझे वो तो एकदम महल लगना शुरू हो गया क्योंकि छोटे छोटे लोग आते थे और लॉयर्स नहीं है, है भी, और एक पेन के हिसाब से आपके दिमाग के हिसाब से जस्टिस देना बहुत अच्छी बात है. इससे ये तो एकदम भगवान की कुर्सी है. कहाँ जाएंगे वो लोग,
हाँ, छोटे छोटे
वो लोगों के मेरे जजमेंट के हिसाब से उनका तो लाइफ बन जाता है.
yes.
वो मेरी एकदम सबसे बड़ा खुशी के दिन था थे वो दिनों मैं जब करती थी ऐसे जजमेंट्स. वो उधर से मैं ऐसी महाराष्ट्र स्टेट कमीशन की मेंबर बनी कंज्यूमर कोर्ट्स में. उसके बाद नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बैठ के जजमेंट्स लिखने का अवकाश मिला. 10 साल दिल्ली में थी.
दिल्ली में थी
बट आती थी वीकेंड के लिए मेरे फैमिली के लिए. बट मंडे टू फ्राइडे काम किया.
अच्छा.
10 साल किया.
दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात. दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात. मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात. हसरत भी कोई लाया है. तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात. मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात. दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात. आज की
आते हैं चांद तारे.
वापस आएंगे, बिकॉज ये इनफ नहीं हुआ कंज्यूमर कोर्ट का. लेकिन ये बताइए, आपने बुक्स भी लिखी हैं, ऑथर हैं आप, सम कंज्यूमर इज किंग.
क्या हुआ वो दिनों में, बहुत सारे जजमेंट्स में आके मैं सब दोस्तों को बताती थी, देखो आपकी मेडिकल केयर ऐसा होता है जहाँ आपकी पूरे रिकॉर्ड रखना चाहिए, डॉक्टर्स का क्या हो रहा है, आपके रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल में हुई कैसे हुई ये सब भी आपको रखना चाहिए. कभी आपको प्रॉब्लम हुई, कुछ भी गलत चीज़ हो गई, आपको ये सब भी यू नो एविडेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है. और फिर मैं बोलती थी आपके जो भी है इंश्योरेंस लिया, बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस यू नो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में. सो मैं बोली देखो ऐसे जजमेंट्स लिखे हैं, ये तो नेशनल कमीशन है, सो पूरे देश को एप्लीकेबल है, सो यू मस्ट नो. सबको मैं लाके देती थी, वो लोग बोलते थे ये क्या लैंग्वेज है, रेस्पोंडेंट है ये, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है लैंग्वेज. फिर मुझे लगा शायद पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं पड़ रहा है, ऑर्डिनरी लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा. और थोड़ा बहुत मालूम है लोगों को राइट्स के बारे में, कंज्यूमर राइट्स. फिर मैं एक बुक लिखी, कंज्यूमर इज किंग, जब मैं बेंच पे थी वो टाइम पे ही लिखी.
अच्छा.
और उसको सिंपल स्टोरीज, मैं वहाँ गई ऐसा हुआ, और फिर मैं कोर्ट में गई, मुझे ऐसे ऐसे पैसे मिले और ऐसे जजमेंट मिला.
अच्छा.
ऐसे नंबर, जजमेंट का नंबर देख के वो स्टोरीज जैसे लिखी. और बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मेडिकल, सभी हाउसिंग, सभी अलग अलग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके, सो ऐसे ऐसे चैप्टर्स करके लिखी. सो एनीबडी कैन, वो गाइड जैसा था. सो उसको 12 लैंग्वेजेस में करवाई, ट्रांसलेट करके पूरा देश में, वो उर्दू, पंजाबी, सभी लैंग्वेजेस. मुझे वो पैशन है, वो सबको उनके कंज्यूमर राइट्स
मालूम होना चाहिए,
पता चलना चाहिए. नहीं तो क्या है, जिंदगी बहुत मुश्किल पड़ जाता है. फिफ्थ एडिशन, रिवाइज एडिशन अभी करने वाली हूँ, क्योंकि अभी एक्ट बदला है और अभी पार्लियामेंट में ये हुई, शायद बहुत 5-6 महीने में 5 रिवाइज एडिशन आएगा.
पहले वाली बुक है, प्रीवियस,
वो शायद होएगा,
शायद होएगा. तो हम आपसे मंगाएंगे एक कॉपी.
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम.
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम.
तुझे देखा तो ये जाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
का एक और प्रोफाइल में है कि आपने कुछ करा है विद डेफ वुमेन।
हाँ,
ये क्या चीज है ये?
एक्चुअली मैं जब दिल्ली में थी, राम जेठमलानी ने एक ग्रुप ऑफ लेडीज को भेजे और वो सब लोग डेफ लोग हैं, और मुझे मैसेज मिला मुझे उनसे मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोगों को स्पीकिंग प्रेसिडेंट चाहिए। मैं बोले मुझे कहाँ टाइम है, मेरे फैमिली बॉम्बे एवरी फ्राइडे में आ रही, मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल। मैं मना कर रही थी बट वो लोग मेरे चेंबर में आ चुके थे।
अच्छा।
सो जब वो लोग अंदर आए, पूरे दुनिया को मैं हेल्प कर रही हूँ जिसको थोड़ा बहुत उनके राइट्स मालूम है। ये लोगों की जिंदगी में बस डार्कनेस है, अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि वो पुअर गर्ल्स हैं, उनके माँ को पैसे ही नहीं है ये लड़की को खिलाने के लिए। वो दूसरा बच्चा को खिला के बेचती है काम पे लिए कहीं भी, ये लड़की को घर में रखती है। कुछ भी स्किलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, अंधेरा
ही स्कूलिंग भी नहीं कराते हैं,
कुछ भी नहीं, पैसा नहीं है ना। तो मुझे बहुत खराब लगा कि ऐसे लोगों को मैं मदद नहीं कर रही हूँ, मैं मदद कर रही हूँ जिसको ऑलरेडी राइट्स मालूम है। अरे क्या मैं सोचा, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं तुरंत हाँ बोली। उसके बाद मैं दिल्ली में जब थी, वो उसके प्रेसिडेंट रह के बहुत किया, और सुप्रीम कोर्ट जजेस सब लोग आए थे फंक्शंस के लिए दिल्ली में, मेरे नाम सुन के सब लोग आते थे। फिर जब मुंबई आ गई तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ रहे थे, मैडम आप आइए प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मुझे भी खराब लग रहा था कैसे छोड़ूं। तो फिर मैं सोची ये इसको नेशनल क्यों नहीं बनाती हूँ, ऑल इंडिया फाउंडेशन बना के सभी चैप्टर्स बना दूंगी। मुंबई में भी है, सभी स्टेट्स में है ऐसे एसोसिएशंस, वो लोगों को जोड़ के मैं अभी ऑल इंडिया फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन किया। और इसमें हम सब स्टेट्स में स्किल करते हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर हो, टेलरिंग हो, जो भी है, और वो हिसाब से उनको जॉब मिलता है। लड़के लोगों को, लड़कियों को भी बुला के पेरेंट्स के साथ मिलवा देती हूँ, प्रणय मिलन करके। 30 years में किया, 30 साल से ये फंक्शन
करवा देते हैं।
वो लोग आपस में मिलते हैं, 50 लड़के 50 लड़कियाँ उनके पेरेंट्स के साथ।
अच्छा।
एक एक आके उनका साइन लैंग्वेज बोलती है, कैसी है, उनको क्या चाहिए। वो 3 महीने में एक एक का वेडिंग कार्ड आता रहता है। एक साल के बाद वो छोटा बच्चा को भी ले आते हैं और उनके लाइफ बन गया, पेरेंट्स
तो
बन गए,
बहुत
खुश है वो।
चैरिटी से ज्यादा है ये।
और इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन रखती हूँ एक स्टेट में, और वो लोगों को लगता है उनको पद्मश्री मिला है क्योंकि उनको वो जो डांस करते हैं ग्रुप में बिना हियरिंग करते हैं, और बहुत सारे टैलेंट्स के लिए हम प्राइजेस देते हैं, वंस ईयर करते हैं एक एक स्टेट में।
कितने वुमेन है, मतलब ऐसा पॉपुलेशन
बहुत है, बट ऐसा नहीं कि वो लोग सामने आते हैं जितने लोगों को
हम तो
देख
ही
सकते
नहीं
हैं
कभी ऐसे किसी को।
हाँ, बट क्योंकि वो दिखने में हमारे जैसे ही दिखते हैं
तो मालूम नहीं पड़ता
है। बट उनकी चाहत किसी को मालूम नहीं पड़ता है ना, वो हमारे जैसे हैं पर हमारे जैसे बन नहीं सकते। उनका टैलेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको एक बार सिखाओ दिखाओ मेरे से बेटर है, दे कैन डू बेटर देन अदर्स बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग है, बट चांस देने वाले लोग नहीं है। सो इसके लिए मुझे लगा उनको हेल्प करनी चाहिए।
तो ये ऑनगोइंग है क्या?
बहुत खुश हूँ वो काम करते करते, बहुत अच्छा लगता है। उनका जिंदगी बन गया, हमारे छोटी छोटी चीज करते करते किसी का जिंदगी बन गया,
बहुत बड़ा काम है ये तो।
अच्छा लगता है।
लीगल काउंसलिंग क्या करते हैं?
मैं ऐसा लीगल काउंसलिंग जैसा नहीं कर रही हूँ,
जस्ट हेल्प।
जो भी मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं मैं यू नो हेल्प देती हूँ, बट इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर में मैं लीगल अवेयरनेस शुरू किया। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड एंड जस्टिस सुजाता मनोहर उसको इनॉग्रेट किए, और वहाँ हम एवरी सेकेंड मंथ एक प्रोग्राम रखते हैं। जैसे विमेन को उनके राइट्स मालूम नहीं पड़ता है, औरत समझते हैं हस्बैंड है, पेरेंट्स है, भाई है, सब लोग देखभाल करेंगे बच्चे, बट जब एक टर्न आता है लाइफ में ऐसे सिचुएशन होते हैं वो एकदम रोड में खड़े जाते हैं, उनको तो प्रॉपर्टी चला गया, पैसे चले गए, और फैमिली में इतना डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और मुझे लगता है किसी को आइडिया ही नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही धुन में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला है. सो मैं इसीलिए उनको पकड़ के सिखाती हूँ और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को ला के वो बातचीत होती है. उससे उनको मालूम पड़ता है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, क्या कैसे चलनी चाहिए ये, और कंज्यूमर राइट्स जो भी है, इतने सारे चीज़ें जहाँ विमेन को पता ही नहीं है, और विल कैसे लिखना है, क्या करनी है, ये सभी चीज़ें अभी एवरी सेकेंड मंथ में करवाती हूँ ताकि लोगों को थोड़ा ज्ञान मिले.
आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे.
अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे.
जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे.
अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे.
ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे. ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे.
जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे.
कहो के ये रंगीन सपने जाके मिटा तो न दोगे.
अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे. जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने.
इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे.
अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे.
जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे.
अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे.
आपको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, मेन क्या है इसमें?
नहीं,
दो तीन नाम बताइए.
सच्ची अवार्ड्स का मुझे इंटरेस्ट नहीं है. नहीं अब काम करते रहो, अवार्ड्स का तो सोचना ही नहीं, आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है,
आपको पकड़ के देते
आपके दिल में अवार्ड मिलना चाहिए, आपके माइंड से आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। आप जो कुर्सी में बैठे हो वो कुर्सी के लिए हम अच्छा काम किया, भगवान के नाम पे गलत नहीं किया, इतना ही अवार्ड चाहिए। मुझे अवार्ड्स का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बहुत मिला है मिलेगा भी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है
ज्यादा,
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी ज़िंदगी में ये। मैं रिटर्न के लिए नहीं देखती हूँ, जो करना है तुमको अच्छा लगना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं करना है कि किसी को हैप्पी करनी है या कुछ अवार्ड्स करना है, कुछ रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दिल से करना है जो अच्छा काम है, बस तुम खुश हो, तुमको अवार्ड मिल गया,
जिनको चाहिए उनको इजीली मिलता नहीं है,
उसका इंटरेस्ट नहीं है, फ़र्क भी नहीं पड़ता है।
ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे कंज्यूमर मैटर के बारे में और बताइए कि कोई ऐसे इंस्टेंसेस आपके ध्यान में हैं कि आपने जो जिसको मतलब बेनिफिट हुआ आपके इंटरवेंशन से या आपके जजमेंट से, क्या इंस्टेंसेस होते हैं कंज्यूमर कोर्ट में?
कभी कभी देखिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम भरते हैं और हमें पता नहीं है, कभी हमें हार्ट प्रॉब्लम है, कभी गए नहीं, हार्ट का इश्यू ही नहीं था, ठीक ठाक हूँ, और किसी को भी मालूम नहीं है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे भी मालूम नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी में गया वो डॉक्टर को भी मालूम नहीं है, सभी टेस्ट ठीक आया, फिर ट्रिपल बाईपास करना पड़ा, बाईपास स्टेंट्स विंस लगानी पड़ी, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं आप लिया है, आपको पता है आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप बताया नहीं, अरे ये मुझे पता है तो मैं पहले डॉक्टर के पास जाके ठीक ठाक करवा दूंगी, ऐसे आपके इंश्योरेंस का कुछ आप बाद में इतना दौड़ने के बाद आप देंगे करके ऐसा थोड़ी जाऊंगी करूंगी, ये क्या बात कर रहे हो, क्यों छोटी सी बात से वो लोग उनको ना बोला क्या है, मेडिकल हिस्ट्री में कहीं भी नहीं था, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में कहीं नहीं था, प्री एग्जिस्टिंग है करके अब कैसे इसको ना बोला। फिर वो बोले नहीं, वो एडमिशन में वाइफ ने बताया कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सांस मुश्किल हो रहा था और स्टेप्स क्लाइम करते टाइम, सो मैं इसीलिए मैं बोली डॉक्टर के पास चेकअप करो, मैं बोलती रही ये सुना है नहीं, बहुत साल से ऐसा हो रहा है, बस ये बात
पकड़ ली,
अरे मुझे भी तकलीफ होता है अभी स्टेप्स चढ़ने में, ऐसी थोड़ी बात है, मैं कल मेरे हार्ट अटैक होने वाली है, ऐसा किसको पता चलता है, सब जेनेटिकली सबको मालूम है, ये नहीं कि सबको ये पता चलता है, सो ऐसे ये गलत चीज़ है। वो बोले नहीं, एक बार साइन किया है वो फाइनल है, वो एग्रीमेंट फाइनल है, आप और LIC के इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये फाइनल है। मैं बोली देखो एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड जब आपकी इंश्योरेंस करेक्ट तरीके में नहीं है, वन साइडेड कभी नहीं हो सकता, ये दो साइडेड होना चाहिए, जब हमको सब सच बोलना है आपको बस सच बोलना है मुझे, ऐसे नहीं कि कुछ भी करो,
वो फाइन प्रिंट में डाल देते हैं, कौन पढ़ता है
एग्जैक्टली इसीलिए बहुत सारे
पढ़ते ही नहीं है,
बहुत सारे जजमेंट इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे पढ़ के बहुत किया मैंने, और बहुत यू नो यूजफुल जजमेंट्स है, सो मैं खुश हूँ कि ऐसा सोचने में अच्छे अच्छे जजमेंट्स निकले हमारे माइंड से वो दिनों में,
मतलब बहुत लोगों के लिए आप मसीहा बोलते हैं, आप पता नहीं आप समझते हैं
कि नहीं, मालूम है बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की,
तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की,
Thank you. सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा।
अब फ्यूचर क्या आपने सोच रखा है, यही करते रहेंगे या कोई और प्लान्स हैं?
पता नहीं, लाइफ में अलग अलग डोर्स खुलते रहते हैं सडनली, कहाँ से कैसे मालूम नहीं, कभी वो डायरेक्शन में देखी भी नहीं,
बट फिर आ गया।
होते रहते हैं। और अभी मैं जो इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बनाया है,
मैं हम तो पूछने भूल गए
मैं इसका फर्स्ट टाइम अ वुमन प्रेसिडेंट हुई, नेशनल प्रेसिडेंट, इतने सालों में 51 इयर्स में कोई अभी तक हुई नहीं। सो ये मेरी लाइफ में अचानक आ गए। सो मुझे लगता है कि जितने लोग ऑलरेडी बहुत बहुत पहुंच गए हैं इंडस्ट्री में, उनको इंडो अमेरिकन चेंबर की जरूरत नहीं है। वो पीएमओ के पास कुछ भी कहीं भी चले जाएंगे, करवा देंगे। अभी उनका ऑलरेडी यू नो इतनी सक्सेसफुल है। बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग होते हैं जो मिड लेवल से थोड़ा हाई है, बट ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं, इतने वो जगह पहुंचे, इंटेलिजेंट है, हार्डवर्किंग है और टैलेंट है, बट उनको किसी को पकड़ने का चीज है। जैसे यूएस एम्बेसी में कुछ प्रॉब्लम है, उन ट्रेड प्रॉब्लम्स है, उनको डिस्कस करने के लिए कोई हाथ पकड़नी चाहिए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भी कुछ भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट रिलीफ दे सकते हैं, उनको मालूम नहीं कैसे जाना है वहाँ। वो लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में, बट इसको अमेरिका लेके जाने के लिए, उधर भी बनाने के लिए, उधर भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो भी करना है, नॉलेज नहीं तो यू नो ट्रेड जो भी है, पर उनको हाथ पकड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है वो लोगों के हाथ में पकड़ूं और उनको रास्ता दिखा दूं, वो भी बहुत बड़े हो जाए, यू नो मैटर ऑफ टाइम। सो आई वांट टू होल्ड देयर हैंड। वो इसके लिए मैं बहुत सारे इवेंट्स प्लान कर रही हूँ और डेलीगेशंस लेके जा रही हूँ यूएस, जितना मैं कर सकूँ वो इंडिया के फ्यूचर बनने में क्लॉग में थोड़ा हेल्प करूँ, और इससे हमारी कंट्री बेनिफिट हो जाएगी। हमारे इंडस्ट्रियल पीपल जो मिडिल लेवल में है, वो बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा उनका, वो बहुत बड़ा हो जाएंगे। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी एक साल में ये सब काम करना है बहुत सारी चीज़ों में। और पानी, पानी का प्रॉब्लम है, यूएस एड से काम करके उसको करनी है, थोड़ा डिफरेंट स्टेट्स में कर रही हूँ, सभी रीजन से, 11 रीजन से सभी रीजन्स में कर रही हूँ।
अच्छा।
अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हेल्थ केयर में कर रही हूँ, ये जैसे टेक्सटाइल्स में भी लेके जा रही हूँ, इधर से जाके वहाँ टेक्सटाइल का यूनिट शुरू करने के लिए, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, सभी गवर्नर्स आके हमारे साथ MOUs कर रहे हैं ताकि कुछ बिजनेस करें। सो सामने वाले भी बहुत खुशी से आ रहे हैं अमेरिका से, ये अच्छी बात है।
Oh,
आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, आप टाइम निकाल के आए, थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया, आप मुझे पूछे और ये सब क्वेश्चंस मुझे पूछे, अच्छा लग रहा है मुझे। आई होप आपके लिसनर्स इससे कुछ बेनिफिट करेंगे।
नहीं, उनके लिए अलग तो है ये थोड़ा सा, जो हम नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करते हैं उससे ये जरा हटके है। तो मेरा फाइनल तो ये रहता है कि एक सोशल मैसेज इंडिया में जो नेसेसिटी है, ये गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करो। लेकिन गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरी फैमिली एजुकेट होती है, ऑटोमेटिकली बच्चे भी एजुकेट हो जाते हैं। तो इंडिया में ये लैकिंग है, दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट। अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड व्हेन नोबडी थॉट अबाउट इट।
बहुत अच्छी बात है विकास जी, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी ज़माना आ गई, आप जैसे लोग और प्राइम मिनिस्टर और महिंद्रा सब लोग ऐसे सोच के ये नन्ही कर ली, ऐसा करके आगे बढ़ाई। और मैं क्या बोलती हूँ, ये भी ज़माना देखने वाला है आप, जब बॉयज पीछे रह जाएंगे और वो बोलेंगे हमारे लिए भी राइट चाहिए, क्योंकि विमेन सभी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। आप शुरू किया और ये बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा। अभी भी कोई रीजन्स में अच्छा नहीं है, बट फ्यूचर इज बहुत अच्छा है।
अभी कैचअप तो हो ही रहा है पूरे इंडिया में।
लड़की एक बार पढ़ती है ना, वो कोई उसको रोक ही नहीं सकता है। मेरे पिताजी भेजे, मैं 16 साल की थी हैदराबाद से,
अमेजिंग।
मेरी माँ बोली क्यों, मेरे पिताजी बोले बॉयज गर्ल्स सब एक है, समान है। सो मेरी माँ भी बोलती थी लास्ट तक तुम पढ़ते रहो, अच्छा नंबर वन बनो।
आप बन गई अपने इसमें। अगेन थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे साथ।
तो दोस्तों 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आपने सुना कार्यक्रम छू लो आसमान। और इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू थी श्रीमती राज्यलक्ष्मी राव, नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स। और इनसे बातचीत कर रहे थे विकास मिटेसन, जो है CMD नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट IBG एंड द ऑनररी कौंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। चलते चलते हम आपको ये बताएं, इस कार्यक्रम के लिए निर्मिति सहायक थी प्रीति यादव और नियति भटकर। और FM गोल्ड की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।